दस मन रहता तो आ जाते। तो देखो उद्धव, हमें हमारे पास में किस लिए आए? तो कुछ उनका संदेश तुमको, तुम लोगों को देने के लिए। ओ, हमसे तो उसका कोई संबंध था नहीं, हम तुमसे कोई विवाहित पत्नियां भी नहीं है, हमारे वो लड़के भी तो नहीं। अरे एक था संबंध, वो मानने का और न मानने का। हमने उनको प्रियतम माना, उन्होंने हमको अपनी प्रिया माना। जब मानना बंद हो गया, सखा सखा में सखा है, और जब किसी बात के लिए कुछ मतभेद हो गया तो मिताली छूट गई, कोई पक्की रजिस्ट्री तो हुई नहीं। वेद और समाज के सामने अग्नि में उनके साथ में हमारी शादियां तो हुई नहीं। वो एक मानने की बात थी, उन्होंने उसको भूल दिया और उसको लेप पोत दिया, बस वो खत्म हो गया। तो यहाँ इस जंगल में हमारे पास में उनको संदेश भेजने की क्या जरूरत? अच्छा ठीक है, मान लेके भेज दिया। फिर कहती हैं, हाँ, अच्छा हमारी बातें जरा गड़बड़ हो गई, अपने आप भूल अपनी स्वीकार करती हैं, बात ये ठीक नहीं। क्यों नहीं ठीक हुई भाई? ब्रज में हमारे लिए नहीं आए, सखाओं के लिए नहीं आए, दूसरों के लिए नहीं आए, किंतु एक स्थान है जिसको कोई भूल नहीं सकता है। और तो क्या बात, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, जो लोग घर के प्रिया स्नेह को, वैभव को, पुत्र को, परिवार को, सबको छोड़ करके अनित्य समझ करके और गए, संन्यास ले लिया, मुंडन करा लिया, सब कुछ छोड़ करके चले, तो सबको भूल जाता है, किंतु अपनी मैया को नहीं भूलेंगे। मैया को भूलना संभव है, क्यों? हम लोगों को अस्वीकार कर सकते हैं, करें, किंतु जो एक घड़ा बना है मिट्टी का, वो कैसे कैसे बनता है घड़ा? एक कुम्हार चक्के पर चाक होता है, उस पर मट्टी गीली रख देता है, और एक डंडा से उसको ऐसे ऐसे दूसरा बना करके फुक फुक देकर के छोड़ देता है, और वो घूमने लगता है। साथ में रखता है पानी, साथ में रखता है सूता, सूता माने धागा, और उसको बनाता जाता है, और झट सूता लेकर के काट देगा, और जब जब से पानी थोड़ा सा हाथ में ले लेगा और ऐसे संभालेगा। यदि खड़ा कहता है कि मैं कुछ दिनों के बाद में, अरे भाई हमारा जन्म ऐसे ही हो गया, उसमें सूते और डंडे की कोई जरूरत नहीं है, डंडा और सूता है भी नहीं वहां, उसको अस्वीकार कर सकता है, किंतु अपना जन्म जो मिट्टी से है और अभी भी उसमें मिट्टी लगी हुई है, उसको अस्वीकार नहीं कर सकता है। तो तुम्हारा ये तन मन हमारे प्रभु का, तुम्हारे प्रभु का, यदुनाथ जी का, वो जो शरीर तन मन है उसी से पैदा है, उसी से पला पोसा है, तो उसको कैसे माता को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? ये संभव है? माता जी को कोई संदेश देने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए आपको भेजा गया है? ये कह करके गोपियां एकदम गृह में आतुर हो गई। तो बड़े बड़े मुनि लोग, सन्यासी लोग भी नहीं, ये बात भी ठीक है, सन्यासी लोग, सन्यासियों में सबसे बड़े शिष्य सन्यासी कहलाता है शंकराचार्य। 8 वर्ष की उम्र में या 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया, कैसे जानती हैं? जब वो 5 वर्ष के थे तो बार बार माता जी से कहा कि मैं बन जाना चाहता हूँ भगवान का भजन करने, बेटा हमें छोड़ करके न जाओ, नहीं गए। बार बार कहते हैं किंतु बार बार वो मना कर देती हैं। एक दिन स्नान करने के लिए मैया के साथ में पास ही नदी है दक्षिण में, उस नदी में गए स्नान कर। स्नान करने के लिए जब भीतर जल में प्रवेश उन्होंने किया, माता जी तट पर बैठी हैं, स्नान करके चली आई, और बाल स्वभाव कुछ तैरने से लग गए और थोड़े से पानी में चले गए। जब गए खड़ा तो रोने लगे, मैया मैया बचाओ बचाओ, मुझे ग्राह ने पकड़ लिया। ग्राही कहते हैं ना, मगर ने पकड़ लिया, और धीरे धीरे उनको निगलने लग गया। मैया अब मैं बचूंगा नहीं, मैया जोर से चिल्लाई। लोगों के लिए देखा कोई तट पर नहीं, कोई तट पर है भी तो किसी का साथ नहीं, से जाकर तो उसे छुड़ा लाए। अरे बड़े बड़े दिग्गज हाथियों को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, गजग्राह ने तो सुना। एक छोटे से बच्चे को पकड़ करके धीरे धीरे अथाह पानी की तरफ में ले चलने लग गया, धीरे धीरे निकलने लग गया। अब तो बड़े जोर से ये चिल्ला, मैया मैया जल्दी से कुछ करो, और मैया चिल्ला रही है पानी में आ रही है, उतर जाए हमें, हम भी मर जाए। और लोग उसे चारों तरफ से ऐसे खेत कर रखे, ये मरने जाए, वो तो गया जी भी मरेगी, तुम्हें मरेगी क्या? कहता है शंकराचार्य, मैया एक बात कर दो, अभी तू संन्यास के लिए कह दे, मैं अभी संन्यास ले लूं, परंतु अंतिम समय भी संन्यास का संकल्प लेने से जन्म हमारा नहीं होगा और मैं परब्रह्म को पा जाऊंगा, जल्दी एक बात तू कह दे संन्यास ले। उन्होंने कहा जैसे इस बच्चा को जाइए है बेटा, तू संन्यास ले, तुम्हारी गति हो जाएगा, अब तो बचा नहीं सकती, मैं भी तुम्हारे पीछे मरूंगी। बस जमी संन्यास की बात उन्होंने कह दी, स्वीकृति दे दी, और त्यों ही हंसता हुआ उसमें से निकल आया। देखा जिसे उसको उसने छोड़ दिया मगर ने, और वो धीरे धीरे आया, चलो बेटा घर चले। मैया तुमने तो कह दिया संन्यास लेने की, अब मैं कैसे घर जाऊं, अब तो मैं चलता, चल पड़े। मैया ऐसे थोड़ा रुक जाओ, अंतिम समय में तुम किंतु आ जाना जब मैं रहूंगी तो, और हमारा काम जो कुछ होगा अंतिम तुमको करना पड़ेगा। अच्छा मैया ये तो जब वो मरने लगी अंतिम समय में, तब तक सब बड़े भारी सन्यासी हो चुके थे, किंतु अंतिम समय अपनी माता की इसके लिए वचन जो दिया था उसके लिए आए, माता जी को दर्शन दिया, और उनका क्रिया कर्म सत्कार जो कुछ करना था सन्यासी को नहीं करना चाहिए, उसके लिए कौन सा माता कौन सीता कौन क्या, किंतु किया उसने। वल्लभाचार्य जी का नाम आप लोगों ने सुना, जब वो 80-85 वर्ष के हो गए तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा जी अब तब हम लोगों का संसार के बच्चे हो गए, बहुत भजन का समय चला जा रहा है, अब तुम आदेश तुम भी बूढ़ी हो गई, अपने बच्चों के पास में रहो जब तक जीवित रहो, और हमको कहो हम नहीं संन्यास लेकर के चला जाऊं, खुद भगवान का भजन करो, मैं आदेश नहीं दे। एक दिन उन्होंने क्या किया, जो सोए हुए थे दोनों घर में, और घर में आग लगा दिया, स्वयं आग लगा करके चादर तान करके सो रहे, उनकी स्त्री गर्मी के मारे उठी और अरे जल्दी उठो उठो बाहर भागो भाग बाहर भागो बाहर जल्दी, मैं तो मरा जल्दी भागो हटो बाहर बाहर चलो बाहर चलो, बस चादर उनकी खींच ली और उनको उठा करके जल्दी से जल्दी चलो भागो भागो यहाँ। जब घर से निकले तो सीधा चले वृंदावन की तरफ, कहाँ जा रहे हैं, आपने तुमने आदेश दे दिया अब मैं घर में नहीं लौटूंगा, चले गए काशी में जाकर के संन्यास लिया, और दो दिन के बाद ही उनका शरीर अंत हो गया। तो वो कहते हैं भैया तुम सन्यासी या कोई भी रहे अपने माता का तो जरूर स्मरण करेगा, उसका तो ऋणी रहेगा ही, उसको अस्वीकार करना। अच्छा मैया के लिए तुमको भेजा गया, अच्छा तो उद्धव जी फिर एक बात एक प्रश्न आ जाता है, क्या कहें तुमसे प्रश्न कर देती है, अच्छा ये बतलाओ ये मैया को संतना देने के लिए भेजा तो उसने ये जो कपड़े और भूषण लगाए अपनी कंगालनी मैया को जो पितृगृह में तड़प रही है, खाना पीना छोड़ दिया है, शरीर सूख गया है, कपड़े अदल बदल नहीं करती, इससे फर्से पुराने हो गए हैं, तो मैया को ये अपना वैभव दिखलाने के लिए उसने भेजा, हम लोगों को नहीं तो भेजा भेजा अपनी मैया के लिए भी इसी तरह से भेजा, अच्छी बात है मैया को ये दिखलाने के लिए। एक दरिद्र घर का आदमी राजा बन जाए, नहीं? एक दरिद्र घर का व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री बन जाए या राष्ट्रपति तो वो क्या करेगा, वो अपना ये पद गरिमा को दिखलाना चाहता है, अच्छा तो ये मैया का घर नहीं है, नहीं? तो मैया को ही अपना ये उपदेश दिखाना चाहते हो, कृष्ण का संदेश यदि कहना चाहते हो रमापति का, तो ये मैया का पिताजी का घर नहीं, उनका घर उधर है भैया, ये गलती से इधर आ गया। सखी को अरे सखी ये नंद भवन में जाना चाहता है जो यशोदा भवन, इसको उत्तर का रास्ता बतला दो। उद्धव जी ने सिर नीचा कर लिया, शुक्र है, मैं क्यों आया? बहुत अपने को धिक्कार दे रहे हैं कारियां गोपियां, जाओ जाओ, तुमको देख करके तुम्हारे माता पिता जी धन्य हो जाएंगे और बड़े आनंदित होंगे, तुम्हें गले से लगा लेंगे। ये पुत्र ने हमको हमको सांत्वना देने के लिए भेजा, अखबार में तुम्हें कस लेंगे, उनकी आनंद की सीमा नहीं रहेगी। वो उद्धव जी मर मर करके जी रहे हैं, मर रहे जी रहे हैं, मुख छिपाने के लिए जगह नहीं। मैं क्यों यहाँ आया? फिर गोपियां कह चल रही हैं, वो तो वही खड़े रह गए नहीं, क्यों मैं आया, औरत पर क्यों आया, कपड़े पहन करके क्यों आया, इसको निकाल करके पैदल क्यों नहीं आया, ये सब चिंता कर रहे हैं। बड़ा भूल हो गया, बड़ी भूल हो गई। उद्धव जी से फिर पूछ रहे हैं, उद्धव अच्छा ठीक है, तुम हमारे यहाँ पर रह गए, एक बात बतलाओ तो, कौन सी प्रीति है जो कभी नष्ट नहीं होती? जगत की प्रीति ऐसी है ना, हम किसी से प्यार करते हैं, या तो मैं मर जाऊं या वो आदमी मर जाए, तो प्रीति रहेगी? खत्म। माँ तो पुत्र कब तक प्यार करता है? जब तक कि घर में जोरू ना आ जाए, और मैया जब तक ही झाड़ू दे रही है, बर्तन मांज रही है, सब घर का काम कर रही है, तब तक तो कुछ स्नेह रहेगा। हाँ मैया यदि बैठ गई घर में, बर्तन नहीं मल सकती, तू बच्चा भी तो बर्तन में बैठ करके खिला सकती हो गोदी में। अरे जीवन भर तो मैंने तुम लोगों को खिलाया, अभी तुम लोगों के बच्चों को, अब मुझे भगवान का भजन करने का काम, वृंदावन में चली जाओ, राधे श्याम करना, हमारे घर में रहने से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब बेटा होता नहीं, नहीं होता तो मैं कुछ नहीं जानता, इसे दिन रात लड़ेगी और बच्चों को भी नहीं लगी, बर्तन भी नहीं मार सकती, माँ का कहता में क्या दिखता होगा, वो माँ ही समझेगी। आजकल अधिकांश लोगों में अभी जो जूती है तो नहीं अभी इसको चिंता कर पा रही है, कि तो बूढ़ी हो जाने के बाद में ये चीजों उपलब्धि का विषय होगा, विशेष करके कलयुग के लिए, सतयुग और त्रेता द्वापर तक राम और ये सब थे, और आजकल के लड़के जैसे हो रहे हैं, लड़कियां हो रही हैं, आजकल इसकी संभावना कम है, होते हैं बहुत कम है। कहते कौन सा ऐसी उत्तर बतलाओ, कौन सी प्रीति है जो नित्य काल रहती, कभी भी नहीं मिटती है, अजर अमर प्रीति रहती है? जगत की प्रीति ये निरंतर नहीं रहती, जब तक स्वार्थ है तब तक स्वार्थ लागी करे, ये जगत का ये नियम है। जब तक कुछ स्वार्थ आता है, हम आयरन शस्त्र में अपने रुपए को और अलंकार को रखते हैं, अलंकार को ये रखते हैं आयरन शस्त्र में, आयरन शस्त्र को आनंद होगा इसलिए रखते हैं, कोई दूसरा न हड़प ले, हमारे लड़के न हड़प ले और कोई दूसरी न हड़प ले, वो बहुएं आएंगी और हड़प लेंगी, इसलिए उसको छिपा करके रखो। गाय को हम स्नेह करते हैं, आदर करते हैं, किस लिए? एक सुंदर बच्चा बछड़ी हुई, बड़ी सुंदर, दूध गाय देती है 10 किलो, जब तक देती है तो बड़ी प्यारी है, काम छोड़ करके उसे खिलाने पिलाने आते हैं, उसे वो दूध लेते हैं, और किसी कारण से किसी की नजर लग गई, बछड़ी मर गई, गैया ने दूध देना बंद कर दिया, 1 बरस देखा, 2 बरस देखा, बच्चे नहीं दिए, अब कोई लक्षण नहीं देता है कि बच्चे देगी और दूध देगी, तो क्या करेंगे? घर वाली कहेंगी, बच्चे कहेंगे पिताजी इसको वो हाथ लगता है या क्या, पैंस में बेचे जाओ। अरे कैसे बेचा है इसको, पाला पोसा, अरे इसको लेगा कौन, जानते हैं कसाई आपका फिर कोई नहीं लेगा, अरे थोड़े हम उसको मारने जा रहे हैं तो जो मारेगा मारेगा, आप तो दे जाइए, नहीं आएगा तो ऐसे ही गया हो, फिर दूसरी गैया ले आए। तो गाय के प्रेम के लिए, गाय की सेवा करने के लिए वो तो दिलीप इत्यादि करते थे, कृष्ण करते थे, हम तो स्वार्थी जीव है ना, स्वार्थ लाज करे तो, है ना? तो जो स्वार्थ की प्रतियां हैं और एक निस्वार्थ प्रीति है। जानते उद्धव, यदि तुम रसिक होगे तब तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, और यदि रसिक नहीं होगे तो इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे लिए कभी भी संभव नहीं है। उद्धव जी चुपचाप सुन रहे हैं, कोई भी उत्तर प्रत्युत्तर कुछ नहीं, मुख बंद है। सुना है कभी एक हेतु की प्रीति होती है, अनुपायनी भक्ति होती है, रामचरितमानस उसको अनुपायनी भक्ति दे। अनुपायनी माने जिसका कोई हेतु कारण नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसी प्रीति होती है। और एक प्रीति होती है लौकिकी। अब दोनों में जो प्रीति होती है उद्धव, इसमें से जो लौकिकी प्रीति है वो नष्ट हो जाती है, और जो हेतु की भक्ति जो होती है, प्रीति होती है, वो कभी भी हेतु ही नहीं है, इसलिए वो सैल धारावत अभिचिन्न गति से वो बसी चली जाती है। तब भगवान में उनके चरणों में जब चित्त की गतियां, चित्त की वृत्तियां अभिचिन्न सैल धारावत निरंतर जमयी होकर के लग जाते, इसका नाम है प्रेम। वो जन्म जन्मांतर भी शरीर बदलेगा किंतु वो प्रेम नहीं बदलेगा ना? और जिसका ऐसा नहीं है, शरीर से शरीर की प्रीति करते हैं, सौंदर्य देखकर भोग के लिए, स्वार्थ के लिए, घर गृहस्थी के लिए, तो उनका वो चीज समाप्त होगा, कारण और साथ साथ में प्रीति भी नष्ट हो जाएगी। अच्छा उद्धव, एक बात कहूं, हमारी प्रीति लौकिक ही नहीं थी, हमने उनसे प्रेम किसी स्वार्थ से नहीं किया, और हम जानते हैं कि उसने भी हमसे जो प्रेम किया उसने निस्वार्थ होकर के किया, उसका कोई हेतु नहीं है। तो उद्धव बतला सकते हैं कि हमारी प्रीति क्यों पूछ गई, विलुप्त हो गई, क्यों ऐसा हुआ, इसका कारण बतलाओ। हमारा प्रेम तो विशुद्ध था, तो ये विशुद्ध होने पर भी कैसे मिट गया? उद्धव जी फिर उद्धव जी को कह रही है, वो उत्तर नहीं दे रहे। स्कूल में, पाठशाला में कुछ बच्चे होते हैं, मास्टर ने पूछा ये बतलाओ तो बतला नहीं पाता, बार बार पूछने पर भी नहीं बतलाता, चुपचाप खड़ा है। उद्धव जी सुनो, उद्धव कुछ प्रीतियां होती हैं, कैसी प्रीतियां, उसके लिए ये बतला रहे हैं। जो प्रीतियां नष्ट हो जाती हैं उसके लिए गोपियां कहते, देखो कैसी प्रीतियां, जो लौकिक प्रीतियां नष्ट हो जाती हैं, जो एक उदाहरण देती हैं, जो सर्पद है भौरा फूलों से प्रेम करता है, और प्रेम करके उड़ता हुआ आएगा, चारों तरफ से मंडराएगा, कभी उसका पुष्प का चुंबन करता है, फिर हट जाएगा, फिर आएगा, उस पर बैठ जाता है, बैठ करके उसको का मधुपान करता है कोसों से, जब उसका पूर्ण मधु ले लेगा तो फिर उड़ जाएगा। भ्रमर ऐसे ही होते हैं, जब तक उसका स्वार्थ है, मधु नहीं पान किया तब तक तो मर रहेगा, और जहां पुष्ण मधु समाप्त हो गया, पी लिया तो बस वहां से भगेगा। उसका प्रीति का हेतु था मधु। तद सत्य सत्ता, तद असत्य तद असत्ता, जब तक मधु था तब तक तो वो मंडराया, जब मधु समाप्त हो गया, उसका प्रीति का हेतु था, तो वो बस छोड़ करके चला गया दूसरों फूलों पर। एक और सुनो, कामुका, जो कामी व्यक्ति हैं, वो रमणियों के प्रति प्रीति दिखलाते हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए, कितना अनुनय विनय क्या नहीं करते हैं, पैरों में गिरेंगे स्वार्थ सिद्धि के लिए। तुम भी स्त्री सुकृत्या जगवत सुमन साई वसठ पदा, जिस प्रकार से कामी पुरुष काम ही नार प्यारी जिनी, उसी दासी ने भी उदाहरण दिया, कोई दूसरा उदाहरण नहीं, इसलिए ये सब उदाहरण शास्त्र में, भागवत में भी ये उदाहरण दे रहे हैं। जो कामी पुरुष स्त्रियों के प्रति लोलुप हो जाता है और उसका सर्वस्व अपहरण कर लेता है, प्रहलाद महाराज जी को उपाख्यान में ऐसा देखा जाता है, पूर्व जन्म में वो ब्राह्मण के बालक थे, सुंदर घर में उनकी स्त्री हुई, विवाह हुआ, बड़े को छोड़ देती है चूप कर। तो धन समाप्त हो जाने के बाद उसे छोड़ देती हैं। निस्वार्थ गणिका प्रजाएं राजा को प्यार करती हैं। कब तक? राजा यदि जब तक बलवान है प्रजाओं का पालन पोषण कर सकता है, जब तक उसमें शक्ति है तब तक प्रजाएं उनको खूब राजा महाराजा जी और गजरे पहुंचाते हैं और उपहार इत्यादि देते हैं। राजा जरा बुढ़ा हो गया, शक्ति समाप्त तो कम हो गई और वो पालन नहीं कर पाता, तब उसके विरुद्ध में वो बगावत कर देते, विद्रोह कर देते ने? और फिर प्रेम नहीं रह जाता, अकल्पात निपति प्रजा। अच्छा, विद्यार्थी लोग हैं, विद्यार्थी पढ़ने के लिए गए गुरु जी के यहाँ। पहले ऐसा नियम था, ये बच्चे 8 वर्ष में उपनयन होने के बाद में गुरुगृह में चले जाते थे। तो ये तो उस समय की बात, विद्यार्थी पढ़ने गए 25 वर्ष की उम्र तक शास्त्र का अध्ययन करेंगे, वैराग्य पूर्वक रहेंगे। 25 वर्ष के बाद में 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते थे, एक नैष्ठिक एक उपकुर्बान। नैष्ठिक वाले तो वहीं से वहीं संन्यास लेकर के भगवान का भजन करेंगे, और उपकुर्बान वाले जो है वो फिर से संसार में लौट करके विवाह शादी करते रह सकते हैं। तो जो छात्र है गुरु जी से, जबकि पढ़ लिख लिया तब तक उनमें प्रीति थी, आज परीक्षा हो गई ने? और परीक्षा होने के बाद में पास हो गए, अब गुरु जी से मिलने जाते हैं कि नहीं? बोर्ड की परीक्षा हो गई, पास कर लिया स्कूल से, सर्टिफिकेट मिल गया, अब स्कूल में मास्टर से कोई भी संबंध नहीं रही ने? छोड़ दिया, क्योंकि वो पात्रता पढ़ने का, अध्ययन समाप्त हुआ और वो खत्म हो गया। पुरोहित यजमान के घर में जाता है, ये सब जागतिक प्रति जो नश्वर जो खत्म हो जाती अभी दिखला रही है, और सिद्ध करना चाहती है कि तुम्हारे श्याम की प्रति हमारे प्रति ऐसी ही स्थिति कर रही है। और पुरोहित लोग यजमान के घर में जाते हैं, हाँ तुम्हारे पिताजी तो मानो हरिचंद्र से ऐसे दानी उसी कुल में आए, अब बड़े प्रशंसा की फूल बांधने लगते हैं और तरह तरह के आशीर्वाद देते हैं, पुत्र संतानों से फलो फूलो, राजाओं जैसा तुम्हारा ऐश्वर्य हो, तुम्हारे गोल में गेहूं भरा रहे, और जो कुछ भी है सब आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़े बात कर रहे हैं। काम थोड़ा सा हो गया और दक्षिणा मिल गई, कपड़े लत्ते मिल गए, रुपये को उन्होंने बांध दिया फूटे में, और गमछे में जो कुछ दिया था वो बांध दिया, दक्षिणा मिल गई। गुरु जी कहते हैं जरा ठहर जाइए, बच्चे रो रहे हैं, घर में गृहिणी अकेली है, फिर कभी आ जाए, अरे थोड़ा सा ठहर जाइए। अब ठहरेगा पुरोहित, कितने बहाने आ जाएंगे, जहां दक्षिणा मिली बस खत्म। चिड़िया पेड़ में रहती है, पक्षी रीतिदा दत्त दक्षिणम, फलवान वृक्ष है, पत्ते लगे हुए हैं, तरह तरह के पक्षी उसमें घोंसला बनाते रहते हैं, यदि वो पेड़ जल जाए सूख जाए पक्षी रहेंगे, न फल है न फूल है न मंजरिया न कुछ है, उस पर आप पक्षी नहीं घोंसला बनाएंगे। हिरण अपने जंगल में बड़ा आनंद से रहता है, यदि हिरण में दबा यदि जंगल में दबाने लग गई और वन जल गया, अब उसमें छोड़ करके चला जाएगा दूसरे हरे भरे जंगल में, वहां पर रहने नहीं रहेगा, क्योंकि स्वार्थ है खाना पीना वहां पर और छाया और ये सब चीजें हैं। और उदाहरण, एक कोई भिखारी है अतिथि, अतिथि गया किसी के यहाँ, आज देखा ना रावण अतिथि बन करके सीता जी के यहाँ गया, कैसा बन ठन करके एकदम बन गया अतिथि। तो अतिथि लोग घर में जाते हैं, अलग जगाते हैं, कहते हैं राधे श्याम राधे श्याम, माने भिक्षा लाओ, भिक्षांग देही पहले था भगवती भिक्षांग देही, अब वो कहते हैं राधे श्याम, अथा राम राम सीताराम लगाया, अलग जगाया। वहाँ पर रह रहा है थोड़ी सी देर, एक मिनट दो मिनट चार मिनट, देखा भिक्षा दे दिया गृहिणी ने और भिक्षा लिया और उलट करके नहीं देखा घर की तरफ, भिक्षा मिल गई ना, नहीं रहेगा। इसी तरह से हमारी भी प्रीति कृष्ण में ऐसी थी और कृष्ण की प्रीति भी हमारे अंदर में यही थी। कृष्ण चले गए कोई भी बात नहीं, हम तो डरते हैं इसलिए कि अब से कृष्ण को कोई भी प्रीति नहीं करेगा। हम बिना किसी कारण के हेतु की, कल हमने बतलाया था ना भक्ति किसको कहते हैं, जब तक समस्त प्रकार की अभिलाषाएं भोग की लालसाएं संसार की किसी चीज के लिए प्रीति न रहे, केवल मात्र कृष्ण के चरणों में प्रीति रहे, ज्ञान वैराग्य योग तपस्या व्रत सब को छोड़ करके कृष्ण के राजा जी के चरणों में प्रेम, और ऐसा क्रिया ऐसी सेवा तन मन वचन से जो कृष्ण को आनंद हो, इसको कहते हैं उत्तम भक्ति। तो गोपियां की भक्ति उत्तम भक्ति से भी बहुत ऊपर प्रेमा भक्ति है, तो कोई प्रयोजन नहीं था। अब सोचते हैं कि हमारे प्रेम में दाग लग गया, लोग कहेंगे अरे गोपियों का प्रेम ऐसा था और कृष्ण का गोपियों के प्रति ऐसा प्रेम था, अब तो उनको कोई स्नेह नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा। उद्धव देखो तुम्हारे प्रभु के लिए हम उतनी दुखी गृह में नहीं, कि प्रेम जो अब अशुद्ध हो गया, शुद्ध प्रेम पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। तुम बतलाओ तो, तुम तो सब शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो, अब इस प्रश्न का उत्तर तुम दो, हमारी प्रीति कैसे नष्ट हो गई, हमें कैसे भूल करके वो चले गए, बतला सकते हो? उत्तर उद्धव जी ने नहीं दिया। कहते हैं कि तुम हतभागिनियों को उत्तर नहीं दे सकते, उद्धव जी को सामर्थ्य नहीं इन प्रश्नों का उत्तर दें। देखा तब जब उत्तर नहीं दिया तब हा नाथ हा प्राणनाथ हा ब्रजनाथ हा गोपीनाथ हे प्राण बल्लभ कहते 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 वैसे एकदम तन्मय होकर के एकदम मानो सुखभूत खो गायंती प्रियकर्माणी रुदंत गतिया लज्जा चली गई, मर्यादा का बोध नहीं रहा, किसी अतिथि के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अपने हृदय की बातें नहीं किसी से कहनी चाहिए, वो बातें भी उघाड़ करके उनके सामने उद्धव जी के सामने वो कहने लग गई जो कहना नहीं चाहिए। कोई पतिव्रता स्त्री ऊपर से बनती है और दूसरे से प्रेम कर लिया दूसरे पति से, अब वो अपने लड़कों को या किसी से कहेगी कि मैं इनको छोड़ करके उससे प्यार करती हूँ, कोई किसी से कहेगी, छिपा करके रखेगी और व्यक्ति भी नहीं कहेगा किसी से इस तरह से। किंतु आज गोपियां एकदम तन्मय हो गई शुद्ध बुद्ध होकर के, और जो नहीं कहना चाहिए ऐसी बातों को भी उघाड़ उघाड़ करके वो एकदम कहने लगी, एकदम निर्लज्ज सी हो गई। क्यों न हो ऐसा, क्योंकि उद्धव जी ने इनका प्रेम यह देख करके ही तो कहा था, बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणु अभिक्त सहजासंग हरि कथो गीत पुनात भवनत्य। वह गोपियों की प्रेम की ध्वजा जब तक ये विश्व रहेगा, जब तक किसी जगत रहेगा तब तक उठती रहेगी, कभी भी ये नीचे धूमिल नहीं हो सकती है। आज उन गोपियों के प्रेम की बातें उनकी गाथाएं प्रेम की जगत के लोग उसको कहकर सुन करके धन्य होंगे, तीन जगत भी उसके लिए पवित्र बन जाएंगे। कौन जगत? किस जगत? जीव जगत और ये मत्स्य जगत, सब कुछ उनके लिए कृपा हो जाएगा। कुछ स्पष्ट से वो कांपने लगी, रोने लगी और कृष्ण से जो विलास इत्यादि की जो बातें हुई थी उनको कहने लग गई। उस समय में जबकि रोने लगी और चलने लगी कहां, कुंज के भीतर, उद्धव जी उनके पीछे पीछे चलने लगे। कुंज में जब भी तब प्रवेश हुई तो देखा एक कुंज में सुंदर कमल के फूलों का की सज्जा बनी हुई है, सुंदर छीन कले भरा स्वर्ण की रंग जैसी, सुवर्ण चंपक प्रदीप्त विदीप्त गौर विग्रह, अत्यंत सुंदर गौर विग्रह, छीन कले भर मरी है कि बची है कोई भी चीज, सांस आ जा रहा है कि नहीं, छीन कलर पड़ी हुई है। उस समय में वो देवी कह रही हैं। उद्धव जी पहुंचे, गोपियों ने आसन दिया बैठने के लिए, ये तो बैठ गई। राधिका जी के चारों तरफ ने आसन दिया, उसने नहीं जो कि सो रही है, और जो गोपियां ले गई थी उन्होंने आसन दिया। कैसा आसन? टूटा फटा, पुराना मलिन। उद्धव जी ने देखा, अब कुछ गोपियों की महिमा कुछ समझने लगे। उन्होंने उस आसन को ग्रहण नहीं किया। यदि पूज्य व्यक्ति हमें कोई आसन देता हो तो बैठ जाना चाहिए झट। दाम्भिक व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति उसका बैठ जाएगा, उसको अपनी गरिमा समझेगा। किंतु जो विद्वान धीर है उसको वो आदर करेंगे। किस रूप में? एक तो गोपी आदेश रही तो बैठो, और इधर आसन दे रही है, उनकी पूजा है। उन्होंने झट सिर नवाया, उस आसन को प्रणाम किया और उसको ऐसे हाथ से कर करके स्पर्श करके और सिर पर ऐसे लगाया और आसन के पास ही में बगल में रख करके बैठे। ऐसा ही होना चाहिए। गुरु व्यक्ति यदि आसन देता है, ये वैष्णवों का विचार सब लेना चाहिए, झट उसको बैठ नहीं जाना चाहिए। उसको प्रणाम करके हाथ से स्पर्श करके सिर पर लगाया और उसको बगल में रख करके आप बगल में बैठ गए।